नूर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, नूर। दोनों ने मुड़कर देखा। अरमान तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। नूर, नूर, वो बेचैनी से उसे पुकार रहा था। रेहान ने तुरंत नूर की तरफ देखा। नूर, तुम अपने कमरे में जाओ, उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। नूर ने एक पल के लिए अरमान की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर, मेरी बात तो सुनो, अरमान पीछे से पुकारता रह गया। लेकिन नूर रुकने वाली नहीं थी। अरमान कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़कर रेहान के पास आ गया। भाई, मेरी बात सुनिए, उसने जल्दी से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें बस गलतफहमी हुई है, रेहान का चेहरा बिल्कुल सख्त हो चुका था। तुम अपने घर वापस जाओ अरमान, उसने ठंडे लहजे में कहा। अरमान को यकीन ही नहीं हुआ। भाई, आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो लगभग दुखी होकर बोला। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेहान की आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, उसने सख्ती से कहा। आज के बाद नूर के किसी भी मामले में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरमान हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। रेहान ने आगे कहा, ना उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने की, ना उसे लेने आने की, और ना ही उसके बारे में कोई बात करने की। उसकी आवाज और सख्त हो गई। और याद रखना, तुम्हारी जुबान पर नूर का नाम भी नहीं आना चाहिए। अरमान एकदम सन रह गया। लेकिन भाई, नूर ने कुछ नहीं किया, उसने धीरे से कहा, और मैंने तो आपसे नूर का नाम भी नहीं लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था, क्योंकि उसकी लव स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने के कगार पर आ गई हो। उधर नूर अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। हॉल में अब सिर्फ रेहान और अरमान खड़े थे। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। रेहाना बेगम भी हॉल में आ गई थीं। अरमान तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। ताई अम्मी, आप मेरी बात समझिए, उसने जल्दी से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मॉम से भी कहा है, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन रेहाना बेगम ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं, उन्होंने सीधा नजर फेर ली। फिर उन्होंने घर की मुलाजिमा से कहा, नूर को मेरे कमरे में भेजो। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और गहरी सोच भी। वहीं एक कोने में सादिया चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस खामोशी थी और आंखों में जलन, क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे नहीं जा रहे थे जैसे उसने सोचा था, और यही बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। नासिर खान अपनी बीवी जुबैदा बेगम पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि दोनों भाइयों में हमेशा से बहुत प्यार रहा था। उन्हें डर था कि जुबैदा की वजह से ये रिश्ता टूट ना जाए। क्या हुआ था, तुमने देखा नहीं कि रेहान ने मुझसे कैसे बात की, जुबैदा बेगम नाराज होकर बोली। नासिर खान ने गहरी सांस ली। हम दोनों भाइयों ने कितने प्यार और मोहब्बत से इन दोनों घरों को जोड़े रखा था, मगर तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो सकता है। जो रेहान ने किया वो आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे ही दोष दे रहे हैं आप, जुबैदा बेगम तुनककर बोली। तुम्हें अभी अपनी गलती समझ नहीं आ रही, नासिर खान ने सख्त लहजे में कहा। तभी अरमान गुस्से में वहां आया। आते ही उसने पास रखी किसी चीज पर जोर से हाथ मारा। ये क्या बदतमीजी है, जुबैदा बेगम ने उसे घूरते हुए कहा। अरमान की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बदतमीजी मैंने नहीं की मॉम, बदतमीजी आपने की थी। आप नूर पर हाथ उठाने वाली थी, उसकी आवाज में नाराजगी थी। आपने ही हम दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। नासिर खान ने बेटे की बात का समर्थन किया। सही कह रहा है बेटा, तुम्हारी मॉम की गलती की वजह से वो लोग इतने नाराज होकर गए हैं, अरमान ने मायूसी से कहा। डैड, मुझे नूर से बात भी नहीं करने दी गई, ताई अम्मी ने मना कर दिया। माहिरा, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर नूर अरमान से बात नहीं करना चाहती तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। नासिर खान ने अरमान को समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मॉम जाएगी और तुम्हारी ताई अम्मी से बात करेगी, सब ठीक हो जाएगा। अरमान ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता डैड, आप ताई अम्मी को जानते हैं, जब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा वो नहीं मानेंगी। तुम फिक्र मत करो, नासिर खान ने उसे दिलासा दिया, मैं हूं ना और तुम्हारी मॉम भी है, सब ठीक कर देंगी। नासिर खान का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि अरमान की फिक्र सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि नूर को लेकर भी थी। मॉम, आप अभी ताई अम्मी को फोन करिए प्लीज, अरमान ने कहा। अगर आप उन्हें मना लेंगी तो नूर भी मान जाएगी। माहिरा अब भी चुप थी, मगर उसकी नजरें अरमान पर टिकी थीं। वो बस सब कुछ गौर से देख रही थी। आखिर जुबैदा बेगम से रहा नहीं गया, उन्होंने शक भरी नजरों से अरमान को देखा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मान लिया कि रेहान और रेहाना बेगम नूर के लिए फिक्रमंद होंगे, आखिर वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? जुबैदा, नासिर खान ने तुरंत अपनी बीवी को टोक दिया, वो नहीं चाहते थे कि बात इस तरफ जाए। पहले वो सब ठीक करो जो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, उन्होंने सख्ती से कहा। जुबैदा बेगम आहत हो गई। आप मुझे ही मुजरिम क्यों बना रहे हैं, उन्होंने दुख और गुस्से से कहा, मैंने सिर्फ बात ही तो की थी, किसी पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया था, मगर आप सबने मुझे ही कसूरवार बना दिया। माहिरा जो पहले गुस्से में थी अब थोड़ा शांत हो चुकी थी। उसे भी लगने लगा था कि अगर अरमान कह रहा है कि नूर की गलती नहीं है तो शायद सच में उसकी कोई गलती नहीं होगी, इसलिए वो चुपचाप अरमान के साथ अंदर चली गई। नासिर खान भी जुबैदा बेगम पर गुस्सा होते हुए वहां से चले गए। जुबैदा बेगम वहीं खड़ी रह गईं। वो गुस्से में थीं, मगर आखिर एक माँ भी थी, इसलिए उनके दिल में अरमान के लिए चिंता भी थी। उधर रेहाना बेगम ने नूर को अपने कमरे में बुलाया हुआ था। असल में उन्हें लगा था कि नूर का मूड बहुत खराब है, इसलिए वो उसका दिल बहराना चाहती थीं। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें कुछ परफ्यूम, मेकअप और एक सुंदर सी किट रखी हुई थी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। नूर हैरानी से उन्हें देखने लगी। मेरे लिए? रेहाना बेगम मुस्कुराई। हाँ बेटा, जब भी तुम्हारे ताया अब्बू बाहर जाते हैं तो अक्सर ऐसा सामान ले आते हैं। ये मेरे काम का नहीं, तुम्हारे काम का है। नूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं कमरे में जाकर लगाती हूँ, वो कहने लगी। नहीं, यहीं लगा लो, रेहाना बेगम ने प्यार से कहा, और आज तुम यहीं मेरे पास सो जाओ। वो असल में नूर को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करवाना चाहती थी। उसी वक्त नूर के फोन पर अरमान के लगातार मैसेज आ रहे थे। नूर ने स्क्रीन देखी जरूर, मगर फोन नहीं उठाया। रेहाना बेगम ने प्यार से कहा, तुम्हारे ताया अब्बू तो बाहर गए हुए हैं, मैं कमरे में अकेली हूँ, इसलिए कह रही हूँ आज मेरे साथ ही सो जाओ। फिर उन्होंने नूर के सिर पर हाथ फेरा। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी किसी बात में कोई गलती नहीं है, जुबैदा बेगम को बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए तुम अपना मूड खराब मत करो, खुश रहो। नूर कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ताई अम्मी, मैं आपसे चाची जान के बारे में नहीं बल्कि अरमान के बारे में बात करना चाहती हूँ। रेहाना बेगम हल्का सा मुस्कुराई। अरमान, वो तो बचपन से ही बहुत अच्छा लड़का है, नूर ने धीरे से कहा। नहीं ताई अम्मी, मैं आपको ये कहना चाहती थी कि अरमान को किसी ने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद। नूर असल में ये बताना चाहती थी कि अरमान ने जानबूझकर उसके बनाए हुए कपकेक खाए थे और उसी वजह से वो बीमार हुआ था, मगर रेहाना बेगम ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कहा, छोड़ो बेटा, अभी तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। उसी वक्त नूर का फोन फिर बजने लगा। इस बार अरमान का कॉल था। रेहाना बेगम की भी नज़र फोन पर पड़ गई।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें और साथ में रेटिंग भी दें।